ओम शांति। वॉइस तो आज तपस्या का दिन है और रविवार का दिन और मधुबन में भी बहुत अच्छा यहाँ पर मौसम है आज। और हमने सुना है कि वहाँ पर थोड़ी बारिश हो रही है, तो आज के दिन सभी अपने मन को भट्टी के लिए तैयार करेंगे, जितना हो सके इस शरीर में कम रहने का अभ्यास करेंगे और अधिकतर समय अंतर्मुखी और मौन रहने का अभ्यास करेंगे। जब भी भट्टियों का कार्यक्रम होता है तो हमारा जो मन है उसे रुकने का एक अवसर प्रदान होता है। नहीं तो मन का स्वभाव है कि वो भागते रहता है, वो दौड़ते रहता है, और इस तरह रुक जाना अध्यात्म का एक कदम है। तो हम सबका बहुत बड़ा भाग्य है कि आप सभी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं और आज हम थोड़ी ज्ञान की चर्चा करेंगे, बीच बीच में योग के थोड़े प्रयोग भी करेंगे। हमें याद आ रहा है बचपन में एक हमने कहानी सुनी थी जिसमें एक व्यक्ति होता है जो कि रेगिस्तान से जा रहा होता है और बहुत कड़ी धूप होती है, अकेला है वो, पसीना हो रहा है उसे, थकान हो रही है और वो चल रहा है। आकाश की ओर देखता है और भगवान से कहता है, हे प्रभु, तूने एक ऐसी दुनिया बनाई है, इसमें तो देखो चारों तरफ रेत ही रेत है यहाँ पर, और यहाँ पर पानी की एक बूंद नहीं। कितना अच्छा होता कि यदि चारों तरफ हरियाली होती। और वो आगे बढ़ता जाता है और जैसे आगे बढ़ता है वो फिर ऊपर देखता है आसमान की तरफ और भगवान से कहता है कि कितना समय हो गया यहाँ पर कोई बारिश नहीं, कोई पानी नहीं। कितना अच्छा यदि होता कि पानी आ जाए, बारिश हो जाए और चारों तरफ हरियाली हो जाए। परंतु उस तपती धूप में वो भगवान से कहता है, यहाँ तो केवल पसीना ही पसीना है और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जब से जैसे ही वो ये कहता है अचानक उसकी नजर एक कुएं पर पड़ती है। वो व्यक्ति इस कुएं से, इस रास्ते से कई बार जा चुका हो पर आज तक उसने ये कुआं कभी नहीं देखा था। जब अचानक उसे कुआं दिखता है तो उसे आश्चर्य होता है, वो भाग कर जाता है और उस कुएं को देखता है तो उसमें लबालब पानी भरा हुआ है। फिर से वो आकाश की ओर देखता है और कहता है, केवल पानी होने से क्या होता है, मैं इसको निकालू कैसे। तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है कुएं के पीछे एक बकेट है और एक रस्सी है। वो फिर से ऊपर देखता है और कहता है, मैं इतना थक गया हूं, ये पानी अब निकालेगा कौन। तभी अचानक देखता है उसके पीछे एक ऊंट है और जैसे ऊंट को देखता है उसके मन में विचार आता है, कहीं इस रेगिस्तान को हरियाली बनाने का कार्य मुझे तो नहीं करना पड़ेगा। और वो बिना ऊपर देखे वहां से भागने की सोचता है और थोड़े ही कदम चलता है तो देखता है अचानक पीछे से एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा आके उसके कमर में पीछे से चिपक गया है और रुक के देखता है उसमें क्या लिखा है। तो उसमें लिखा होता है कि तुम्हें पानी चाहिए था, मैंने तुम्हें कुआं दिया। उसमें लिखा होता है कि तुम्हें मैंने एक रस्सी भी दी, एक बकेट भी दी और तुम्हें पानी निकालने के लिए एक ऊंट भी दिया। फिर भी तुम पानी नहीं निकाल के भाग क्यों रहे हो? तब अचानक उसके मन में विचार आता है और वो डर जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। शायद ये कहानी अधूरी है, पर इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। मनुष्य का मन हमेशा बहाने बनाता है। उसे पता नहीं कितने अवसर मिलते हैं जीवन में, फिर भी कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई शिकायत उसके मन में हमेशा रहती है। और आज सुबह भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, आलस, अलबेलापन और बहानेबाजी, अवसर हमारे सामने हमेशा रहता है। और संगम युग जो ना हो सके इस लाभ उठा लिया, क्योंकि जब बहुत सारी महान आत्माएं एकत्र होती है तो एक संगठित ऊर्जा वहां बहती है, और जहां पर संगठित ऊर्जा बहती है वहां पर एक शक्ति का आविर्भाव होता है। और यदि हम उस वर्तुल में कहीं है तो हमें भी एक अदृश्य शक्ति जाग जाती है, और वो शक्ति हमारे जीवन में जो परिवर्तन हम चाहते हैं उस परिवर्तन को साकार कर देती है। तो आप सभी जहां बैठे हैं वहीं बैठकर 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने जीवन की संपूर्ण यात्रा को देखेंगे। अब तक मैंने क्या क्या किया, अब तक मेरे पास कौन कौन से अवसर आए और अब तक मैंने क्या क्या प्राप्ति की। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, संपूर्ण मौन में बैठेंगे, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेंगे और चिंतन करो। अपने संपूर्ण जीवन को आगे लाओ, अपने जन्म से लेकर अब तक का जीवन। मैंने क्या क्या पाया, क्या क्या खोया, क्या मेरा जीवन धन्यवाद से भरा है या कंप्लेंट से भरा है? आज की इस भट्टी में मुझे केवल स्वयं को देखना है और स्वयं को जानना है। अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे, दोनों पैर जमीन से स्पर्श हो रहे हैं, ठंडी हवा बह रही है, मन को शांत और शांत करते जाएंगे। ओम शांति। सभी आंखें खोलेंगे। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, और वो विषय है हमारे ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या। हमें ये देखना है कि हमारे जीवन की दिनचर्या कैसी है, क्योंकि इस दिनचर्या को यदि रूहानी बना दिया जाए तो वही दिनचर्या लौकिक ना होकर अलौकिक बन जाती है, रूहानी रूहचर्या बन जाती है। तो हम लंबे समय से इस ज्ञान में चल रहे हैं और हमें बहुत सी बातें पता है, पर जब इस तरह की भट्टियां होती है तब एक फोर्स हमको मिल जाता है और हमारे पुरुषार्थ की स्पीड डबल हो जाती है। तो आज हम दिनचर्या की कुछ बातों को रिवाइज करेंगे। आज हम ऐसी लगभग 10 बातें देखेंगे कि जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या में होनी चाहिए, और अगर ये सब बातें हमारे ब्राह्मण जीवन में है तो ब्राह्मण जीवन आनंद से भर जाएगा, पूरा पुराना गीत हमको नहीं गाना पड़ेगा, जो आज सुबह भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा सब अच्छा है सब अच्छा है। फिर वो जो ब्राह्मणों का ट्रेडमार्क है, जो बाबा ने आज सुबह भी कहा सब चलता है सब होता है, ये नहीं रहेगा। और जीवन का प्रत्येक क्षण एक उत्सव बन जाएगा, एक आनंद बन जाएगा। उत्सव केवल कोई पर्व नहीं है, उत्सव तब घटित होता है जब हम जागृत होते हैं, और यही वास्तव में शिवरात्रि भी है। संपूर्ण जाग जाना, आलस अलबेलापन और बहानेबाजी की नींद को तोड़ देना। मधुबन में हम लोग सब बहुत लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, और यहाँ की जो हमारी दिनचर्या है उसमें जो मूल आधार है वो है अमृत वेला। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि आज तक हमने भी जो पुरुषार्थ किया है, जो चिंतन मनन किया है, वो सारा चिंतन मनन, वो सारा अध्ययन अधिकतर अमृत वेले के समय पर ही किया है। तो जितना अमृत वेला हमारा शक्तिशाली होता है, उतना ही हमारी दिनचर्या शक्तिशाली होती है। तो हमारे इस अलौकिक जीवन में जो प्रथम सोपान है इस किताब का, वो है अमृत वेला। तो जैसे बाबा ने कहा है, पूरे दिनचर्या का जो फाउंडेशन है वो है अमृत वेला। आप में से सभी लोग अमृत वेला करते ही होंगे, परंतु आज इस भट्टी से सभी एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल से मुझे अमृत वेला मिस नहीं करना है। अमृत वेला परमात्मा स्पर्श का समय है, जब हमारी आत्मा में, हमारी चेतना में भगवान का मिलन हो जाता है। अमृत वेला ईश्वर से प्रथम आलिंगन। तो जितना जल्दी हमारा अमृत वेला शुरू हो, उतनी हमारी दिनचर्या शक्तिशाली होगी। यदि हमारा अमृत वेला ही अभी तक स्थिर नहीं है, कभी 3:30 बजे उठ रहे, कभी 3 बजे उठ रहे, कभी 4:45, कभी 4, कभी 4:15, कभी 4:30, तो इसमें बहुत जो खुशी का अनुभव है वो नहीं होगा। हमारा जीवन खुशियों से और आनंद से भर जाए, उसके लिए हमें सुबह सुबह अपने आप को प्रभु प्रेम से भर देना है, परमात्मा शक्तियों से भर देना है। सुबह सुबह उठो, और जो बाबा ने कहा है, भगवान सुबह सुबह भोले भंडारी के रूप में है। अमृत वेला दाता का दरबार है, उससे जो लेना चाहो, जितना लेना चाहो, वो सब हम ले सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने इस अमृत वेले को जीवन की प्रथम प्राथमिकता बना दें, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। तो जितना अमृत वेला शक्तिशाली होगा, उतनी दिनचर्या शक्तिशाली होगी। बाबा ने कहा है, अमृत वेला गाड़ी को पटरी पे डाल दो तो दिन भर अपने आप उस श्रीमत की पटरी पर गाड़ी चलती रहेगी। पर यदि अमृत वेला ही हमारा शक्तिशाली नहीं है, यदि हम अमृत वेला उठ तो रहे परंतु उसमें नींद का प्रकोप है, उसमें आलस है, उसमें अलबेलापन है, उसमें सुस्ती समाई हुई है, तो हम जागृत कैसे रहेंगे? हम कैसे उन ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर सकेंगे? कुछ समय से हम पांडव भवन में एक भट्टी कर रहे हैं, जिसमें लगभग आज 60 दिन हो गए हैं, तो कई सारी आत्माएं इससे जुड़ी हुई है। और ये जो भट्टी है, 108 दिन की भट्टी है। हम चाहेंगे कि यदि आपको अपने अमृत वेला को वास्तव में शक्तिशाली बनाना है, तो अमृत वेले की एक छोटी सी किताब है, वो आप जरूर पढ़ो, और उसी पर ये सुबह की भट्टी भी चल रही है। और हम देखते हैं कई सारी आत्माओं का पुरुषार्थ अमृत वेले पर ध्यान देने से बहुत तीव्र हो जाता है। हमारे दो प्रकार के समय है, एक होता है प्रोडक्टिव टाइम, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम वो टाइम होता है जब हम बहुत ऊर्जावान होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, चार्ज होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, और वो समय होता है सुबह का। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, जैसे दोपहर शाम, वैसे तो पूरा दिन ही हम ऊर्जावान रहना चाहिए, परंतु कलयुगी वातावरण का प्रभाव, संसार का वातावरण, ये सब हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो शाम का समय कई बार ऐसा हो जाता है, या रात का समय हम थोड़ा नॉन प्रोडक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिसमें हम लोग इतने कम इतने उत्साहित नहीं होते जितने सुबह होते हैं। हमारे मन में इतनी एकाग्रता नहीं होती है जितनी कि सुबह होती है। इसीलिए जैसे कहा कि सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे सहज पुरुषार्थ है अमृत वेला, पर उसके लिए कुछ बातें करनी होगी, जैसे कि सुबह रात को जल्दी सोना होगा। यदि रात में ही हम लेट तक जागे रहे तो हम अमृत वेला नहीं उठ पाएंगे। यदि रात में ही हमारा सारा समय मीडिया पर जा रहा है तो फिर हम सुबह उठ नहीं पाएंगे। तो अलौकिक दिनचर्या जो है, रूहचर्या जो है, उसका प्रथम सोपान जो है वो है अमृत वेला। तो सभी संकल्प करेंगे मन ही मन, आप सब वहां बैठे हैं, वहां बैठे बैठे ही संकल्प कर लो कि यदि मुझे बाबा से जुड़ना है, यदि मुझे अपना कनेक्शन बाबा से बहुत स्ट्रांग बनाना है तो मुझे अमृत वेले पर काम करना है। पीछे करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वो सब मैं करूंगा। भोजन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा डिजिटल कर्फ्यू जिसको हम कहते हैं, 9 PM डिजिटल कर्फ्यू, जितना हो सके ऑफलाइन हो जाना या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ ही कर देना। और यहाँ तक मेडिकल साइंस तो कहता है स्लीप हाइजीन एक बहुत अपकमिंग टॉपिक है जिस पर कॉन्फ्रेंस में बड़ी चर्चा होती है। वहां तो यहाँ तक कहा गया है कि जहां आप सोते हैं वहां पर कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए। जितना हो सके अंधेरा, लाइट ऑफ, जितना हो सके फिक्स टाइम। हमें पता है कि यह शायद हो नहीं पाएगा सबके लिए फिक्स टाइम, फिर भी जितना हो सकता है उतना हम अपने टाइम को फिक्स करें। तो यह है सबसे पहली बात। दूसरी चीज है मुरली। मुरली केवल शब्द नहीं है, मुरली केवल ज्ञान सुनना सुनाना वो नहीं है, मुरली को जीना है, मुरली को अपनी आत्मा में उतारना है, अपनी हड्डियों में उतारना है। वो तब होगा जब उस पर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। जैसे आज सुबह भी हम कह रहे थे कि हमें हमारे मन में यदि कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी होने का एक कारण ये है कि हमने उस पर यथार्थ संपूर्ण रीति से चिंतन नहीं किया है। यदि हम उसका अच्छे से चिंतन कर ले, यदि हम उसको देख ले कि इसकी वजह से ये कमजोरी है, इसकी वजह से मैं बार बार गिरता हूँ। वो कमजोरी कुछ भी हो सकती है, शायद संबंधों की कमजोरी, किसी संबंध में कड़वाहट है, और भी कोई जीवन की समस्या है, उस पे हम क्यों उलझ गए हैं उसमें। हो सकता है कहीं ना कहीं हमने उस पर चिंतन कम किया है। तो जैसे ही मुरली हम सुनते हैं, कोई भी एक पॉइंट उसमें से ले लिया जाए और उस पर एकांत में चिंतन करना, उस पर मौन में चिंतन करना, उसके ऊपर लिखना, उसके ऊपर डायग्राम बनाना, कोई चित्र बनाना, उसके ऊपर चर्चा करना, ये सब चीजें जो है हमारे मन को एक्टिवेट करके रखती है, सक्रिय रखती है। क्योंकि माया का आक्रमण हम पर तब होता है जब हम सतर्क नहीं होते। जब ज्ञान बुद्धि से कम हो जाता है तब अपने आप माया का आक्रमण होता है। जब हम बेहोशी में चले जाते हैं तब माया का आक्रमण होता है। यदि हम निरंतर जागृत अवस्था में रहे तो हम कभी भी माया के अधीन नहीं होंगे और हमारा जीवन एक साधक का जीवन हो जाएगा। क्योंकि हमने संसार तो देख ही लिया है, संसार की उथल पुथल देख ली, संसार का सब कुछ अनुभव कर लिया इतने सालों में, और हमें क्या मिला? हलचल हलचल और हलचल। क्यों ना हम अब ऐसा कुछ करें कि जिसमें चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो परंतु हम स्थिर रहे। और यही स्थित प्रज्ञ योगी की परिभाषा है, जितना हम स्थिर रहेंगे भीतर से उतना हमारा जीवन स्थिर होगा। यदि हम भीतर से हिलते रहे तो बाहर से कितना भी खुशी का आडंबर करो, बाहर से कितने भी उत्सव करो, वो केवल रस्म होगी, केवल एक परंपरा, परिवर्तन नहीं होगा उससे। इसीलिए आज से सभी एक संकल्प करेंगे कि हमें गंभीर साधना करनी है, और हम सब साधक हैं तो हमें ज्ञान की साधना करनी है। मधुबन में या और कई सारे सेंटरों पर हमने देखा है छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो लोग मिल के ज्ञान की चर्चा करते हैं, चाहे ऑनलाइन करें चाहे रात को सोने से पहले बैठ के करें, कुछ ना कुछ वो लोग करते रहते हैं। तो इस तरह से ज्ञान की जब चर्चा होती है, ज्ञान को जब हम पढ़ते हैं, तब हमारा मन बहुत शक्तिशाली होने लगता है। ज्ञान के नए संस्कार हमारे मन में फॉर्म होते हैं, जिसको मेडिकल साइंस कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे अज्ञान के संस्कार है, उसी तरह ज्ञान के भी संस्कार है। तो ज्ञान को पढ़ना, सुनना, सुनाना, लिखना, किसी को सिखाना, किसी को समझाना, उस पर चिंतन करना, उस पर मनन करना, उसका अनुभव करना, और ये कार्य दिन भर में थोड़ा 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 होते रहे। कभी वरदान को उठा लिया, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन किया, कभी स्लोगन को ले लिया, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन किया, कभी उसके ऊपर लिखना कोई नए आर्टिकल्स। हम जब नए नए थे तो हम एक कार्य करते थे कि मुरली जब सुनते थे तो पॉइंट्स नहीं लिखते थे, केवल टॉपिक्स लिखते थे, केवल टॉपिक्स, 5 टॉपिक्स फ्रॉम एवरी मुरली। टॉपिक्स लिख दिए और छोड़ दिए, फिर सारे दिन भर में उन टॉपिक्स को निकालते थे और सोचते थे क्या है क्या है क्या है। और कभी कभी ये सोचो कि ये ज्ञान मैंने कितना समझा है अभी तक, क्या मेरी सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ के हो गई, क्या सारी साकार मुरलियां मैंने अच्छे से पढ़ ली समझ ली। और अध्यात्म जो है वो एक प्यास है। जैसे एक सूफी संत है, उससे पूछा गया अध्यात्म क्या है बताओ, तो उसने कहा था हिलेन ने कि अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे, कहीं रुकना है ही नहीं, क्योंकि अगर रुके और ये तृप्ति आ गई कि मैंने सब कुछ जान लिया, मैंने सब कुछ पा लिया, तो वो ठहराव ही हमारे जीवन में एक कमजोरी बन जाएगा, हमें नीचे खींच ले। इसलिए ज्ञान की प्यास निरंतर बनी रहे कि मुझे जानना है, मुझे समझना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्यों हूँ, ये सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। जो उत्तर हमें पहले से उपलब्ध है, उन उत्तरों पर तुरंत नहीं आना है कि मैं आत्मा हूं और परमधाम से हूँ, थोड़ी सी खोज करनी है, थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन मनन करना है, अध्ययन करना है। और ये सब करने के लिए हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा एकांत। तो जितना हो सके सुबह 8 बजे तक तो मोबाइल अगर बंद ही रखो तो बहुत अच्छा, जो नहीं रख सकते उसे साइलेंट पे रखो, जो वो भी नहीं रख सकते कम से कम ऑफलाइन तो रहे। तो ये सारी चीजें हमारे मन को ज्ञान युक्त तो बनाती है। तो सबसे पहली बात बताई, अमृत वेला नियमित करना, और निरंतरता ही सफलता की कुंजी। एक दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, नहीं, हर दिन। दूसरा बताया मुरलियों का अध्ययन, और जितना हो सके मुरली सेंटर पर आकर ही सुननी है। जब हम घर पे रहते हैं केवल, और शायद भोजन बना रहे हैं या कार ड्राइविंग कर रहे हैं या और कुछ कार्य और मुरली सुन रहे हैं, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जैसे ही हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, एक स्थान पर स्थिर बैठते हैं 1 घंटा तक, और वहां के जो वाइब्रेशंस है वो हम कैच कर सकते हैं, और हो सकता है वहां बैठे बैठे ही किसी अज्ञात पल में हमें अपने ही जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो जितना हो सके सेंटर पर जाना, वहां बैठकर मुरली सुनना, नियमितता बहुत आवश्यक है। तो ये है दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात। तीसरा है भोजन। अभी जो भी हम भोजन खाते हैं, वो हम कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बातें करते करते, आवाज करते करते उसे बना रहे हैं या खा रहे हैं, तो उसमें वो शक्ति हमारे मन को आत्मा में नहीं भरती। जितना हम मौन में खाएंगे, जितना हम एकाग्रता से खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे, और उसे जैसे कि प्रार्थना है, जैसे एक यज्ञ है, एक केवल भोग नहीं, जैसे भोजन की एक क्रिया ही एक मौन यज्ञ है, और हम एक एक निवाला धीरे धीरे याद में खाएं, और जितना हो सके अपने भोजन को हल्का और हल्का और हल्का करते जाए, जितना भोजन में उत्तेजना कम होगी उतना मन शांत होगा, जितना भोजन में गरिष्ठता होगी उसमें बहुत ज्यादा टेस्ट के लिए हम खा रहे हैं केवल, तो वो हम में इतनी शक्ति नहीं भरेगा, क्योंकि हमारा मन अपने आप इंद्रिय सुख की तरफ जा रहा है। तो भोजन एक यज्ञ बन जाए, चाहे बनाना है चाहे खाना है, और जो लोग कमा भी रहे हैं वो भी एक महत्वपूर्ण है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। जितना हो सके वो पैसा ईमानदारी का हो, सच्चाई का हो, तभी हमारे अंदर शक्ति भरेगी। तो जब भी भोजन करें बाबा को आह्वान करना, जब भी भोजन करो तो उस भोजन को दृष्टि देना, और जितना हो सके मौन में खाना, और सबसे महत्वपूर्ण मोबाइल को दूर रखना। यदि हम मोबाइल में बातें करते करते या मोबाइल देखते देखते खाते तो हमारा मन विचलित होता है। तो जितना हो सके स्थिरता के साथ मौन में एकांत में बैठकर भोजन खाना है। और जब आप भोजन बनाते भी है तो उस भोजन बनाते समय जो जो सामग्री उसमें डाल रहे हो, एक एक सामग्री को दृष्टि देते हुए, सकाश देते हुए उस भोजन को बनाना है। किसी एक अव्यक्त संदेश में बाबा ने कहा था, यदि भोजन बाबा की याद में बनाया जाए और खाया जाए तो 50% ब्रह्मचर्य स्वतः ही घटित हो जाएगा। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। तो हमारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण धारणा है भोजन की धारणा। तो यह है तीसरी। चौथा जो है वो है ट्रैफिक कंट्रोल। हर एक की दिनचर्या अपनी अपनी है, तो हो सकता है जो ट्रैफिक कंट्रोल बने हुए हैं वो हम ना फॉलो कर सके, पर ट्रैफिक कंट्रोल अर्थात मन का जो ट्रैफिक है, सोल का जो ट्रैफिक है, उसे कुछ समय के लिए रोक देना। और बाबा ने इतनी सारी अव्यक्त मुरलियों में हमें ढेर सारी ड्रिल्स बताई है। आज सुबह की अव्यक्त मुरली में भी ड्रिल बताई, दृढ़ संकल्प ले लो, आज से आलस अलबेलापन या बहानेबाजी समाप्त। तो बीच बीच में अभ्यास करते रहना है, अभी अभी यहाँ हूँ, अभी अभी परमधाम, अभी अभी सूक्ष्मतन, अभी अभी फरिश्ता, तो अलग 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 अभ्यास करेंगे। तो अभी 1 मिनट के लिए हम एक छोटी सी ड्रिल करेंगे, सभी स्थिर होके फिर से बैठेंगे, फिर से 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर देंगे, और 1 सेकंड में परमधाम पहुंच जाओ। अब सीधा सूक्ष्म वतन आ जाएंगे, अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख है, और मैंने जो संकल्प किया है उस संकल्प को साकार करने के लिए बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। विजयी भव। अभी अभी मधुबन आ जाओ, बाबा की कुटिया में बाबा से कहो, बाबा मैं थक गया हूं, और बाबा की गोद में सो जाओ। अभी अभी पहुंचो डायमंड हॉल में, अव्यक्त बाप दादा मेरे सिर पर वरदानी हस्त रखे हुए हैं, मैं स्टेज पर हूं और अव्यक्त बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। अभी अभी पहुंच जाओ सुबह 4 बजे के समय पर, जहां हम रोज अमृत वेला करते हैं, उस स्थान पर देखो, उस स्थान को, ये स्थान रोज मेरा इंतजार करता है, और मैं कितने समय में यहाँ आता हूँ। अब आ जाओ अपने सेवा केंद्र पर, उस सेंटर पर जहाँ आप रोज जाते हैं, और उस सेवा केंद्र का एक चक्कर लगाना। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें निकल चारों ओर फैल रही। अभी वापस आ जाओ इस तन में, आप जहां बैठे हैं अभी अपने आप को देखो, चारों तरफ अव्यक्त वायुमंडल है। संपूर्ण मौन का वातावरण, यहाँ की हवा शुद्ध हो रही है, संपूर्ण वातावरण दिव्य तरंगे तैर रही है। मैं शक्ति हूँ, मंदिरों में जिन देवियों की पूजा हो रही है, वह दुर्गा, वह काली, वो महालक्ष्मी, मैं हूं। रुद्र की रुद्राणी मैं हूं, शिव की शक्ति मैं हूं। मेरे रोम रोम में अनंत शक्ति का भंडार है। विकार मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मधुबन से पवित्रता की किरणें इस पूरे हॉल में आ रही है। परम धाम से पवित्रता की ऊर्जा इस पूरे प्रांगण में फैल रही है। मेरे अंदर के विकार, कमजोरियां, बीमारियां, सब कुछ भस्म हो रहा है। ओम शांति। तो सबसे पहला हमने देखा अमृत वेला, फिर मुरली, फिर भोजन, और चौथा ट्रैफिक कंट्रोल। तो अपने मन को रोज जब जब समय मिले इस शरीर से गायब हो जाना, जब जब समय मिले इस शरीर से बाहर निकल जाना। कभी अव्यक्त स्थिति, कभी फरिश्ता स्थिति, कभी परम धाम की स्थिति, कभी सकाश देने की स्थिति, चारों तरफ अपने आप को घुमाना है। और ये अभ्यास चालू रहे। तो ये था ट्रैफिक कंट्रोल। उसके बाद में है कर्मयोग। जब जब हम कर्म करें, इतना कर्मों में ना उलझ जाए कि हमें याद ही नहीं रहे कि हम किसके लिए कर्म कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं। हमारा कर्म एक यज्ञ बन जाए, एक प्रार्थना बन जाए जो हम अर्पित कर रहे हैं। हमारे हर कर्म से मैंपन गिर जाए, और उसके लिए कर्म करने से पहले और कर्म करने के बाद एक छोटी सी प्रार्थना कहो या एक आह्वान जैसा करना है। हर कर्म से पहले बाबा को बुला लेना, और कर्म होने के बाद उसे समर्पित कर देना, और कर्म के बीच बीच में भी छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना है, जैसे कि थैंक यू बाबा, मिस यू बाबा, लव यू बाबा। उससे जुड़े रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि कर्म हमें उलझा देते हैं, कर्म हमें भटका देते हैं। तो हमें निस्वार्थ कर्म वो सब तो है ही, परंतु साथ में मन की तार उस शिव बाबा से जुड़ी रहे। तो उसके लिए बीच बीच में हमें जब भी समय मिले रुक जाओ थोड़ी देर और बाबा को धन्यवाद करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमने एक शांतिवन में एक बच्चा देखा था, छोटा सा। वो एक्चुअली बच्चा बचपन से थोड़ा सा मंद बुद्धि है, और पर उसने एक क्लास में कहीं सुन लिया था कि शिव बाबा भगवान है और उससे बातें करनी चाहिए। तो उसकी माता जी ज्ञान में चलती है, तो वो जब भी आता है नीचे शांतिवन में, उसकी माँ ने एक छोटा सा उसको मोबाइल दे के रखा है प्लास्टिक का। तो वो क्या करता है, दिन भर शिव बाबा से बातें करते रहता है। वो कहता है, हेलो बाबा, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, आई एम ओके। तो ये भी कितना अच्छा है कि आत्मा किसी ना किसी रीति से उस परम ऊर्जा से जुड़ी हुई है, और शिव बाबा बीज है इस सृष्टि के वृक्ष का, और उस चैतन्य बीज से जैसे हम जुड़ते हैं, हमें अपने जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। तो इसलिए कर्मयोग अर्थात कर्म तो कर रहे, परंतु कर्म के साथ हम उस परम पिता से जुड़े हुए हैं। तो हमारा हर कर्म योग बन जाए, हर कर्म साधना का अभिन्न अंग बन जाए। उसके बाद है सेवा। सेवा अर्थात जिसमें मैं ना रहे, एक है कर्म और योग और एक है सेवा। सेवा में निरंतर एक भाव हो कि मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है, और मैं ये सेवा किस लिए कर रहा हूँ, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए। अगर हम में अगर ये भाव रहा कि मैं दूसरों के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें अहंकार आ सकता है। हम ये हमेशा सोचे कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी शुद्धि के लिए कर रहा हूँ, और एक दूसरा संकल्प और जोड़ दो, यदि ब्राह्मण जीवन में मेरे द्वारा कोई विकर्म हुए हैं, कोई पाप कर्म हुआ है, तो ये सेवा उसका प्रायश्चित है। मुझे भगवान ने एक अवसर दिया है कि मैं अब दूसरों की सेवा करूं, और मुझे अपने आप पुण्य प्राप्त हो जिससे मेरे पाप और विकर्म अपने आप दग्ध हो जाए। और सेवाओं में सबसे अच्छी चीज है, हमें बहुत दुआएं मिलती है आत्माओं की, जितनी अधिक लोगों की हम सेवा करें। और सेवा अर्थात ये नहीं कि केवल हम ज्ञान योग और आत्मा परमात्मा की बातें ही उनको सुनाएं, किसी भी तरह की सेवा। जैसे कोई बीमार है और यदि हम उसकी हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, कोई अनाथ आश्रम होगा, हम वहां जाकर उन बच्चों को कभी मिल के आते हैं, अनाथ आश्रम में कभी कभी जाते हैं, कभी गार्डन में जाते हैं, कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी तरह की कोई भी सेवा। क्योंकि हर सेवा हमें एक ऊंचे स्थिति में, ऊंची स्थिति में स्थित कर देती, इसलिए हमें अपने जीवन को सेवामयी बनाना है। वी आर इटर्नल सेवाधारी, और सेवाधारी का ये नहीं है कि इतने से इतना समय सेवा करूंगा, मेरा समय समाप्त हुआ। जब भी सेवा पुकारे हमें तैयार रहना है, चाहे वो सेवा केंद्र की सेवा हो, मधुबन की सेवा हो, लौकिक वालों की सेवा हो, किसी की भी सेवा हो। क्योंकि लोग हमारे ज्ञान योग को नहीं देखते, वो हमारे आचरण और हमारे कर्म को देखते हैं। यदि हम में ज्ञान में है और घर वाले सारे विरोध में है, परंतु वो ये भी तो देखते हैं कि इतना सब होते हुए भी हम उनकी भी सेवा कर रहे हैं। हमारा उनके प्रति कोई विरोध नहीं है, कोई उनके प्रति कोई घृणा भाव नहीं है, परंतु हाँ, हमने अपने जीवन का मार्ग चुन लिया है और यही मार्ग है। इसीलिए हम जहां जहां आवश्यक हो उनकी भी सेवा करें, और सेवा केवल स्थूल ही नहीं, मन में भी, अमृत वेला भी, उनको अपने सामने इमर्ज करना, उनको सकाश देना, उनसे माफी मांगना, उन्हें माफ करना, ये सारे कार्य हमारी सेवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो सेवा का एक मुख्य लक्ष्य है दुआएं, बहुत सारी दुआएं का मांग, जो जो मिले सबके मन से हमारे लिए क्या निकले, दुआएं निकले। तो जितनी ज्यादा दुआएं हमारे पास होगी, हमारे पुरुषार्थ की स्पीड डबल हो जाएगी अपने आप। तो ये करना है। उसके बाद का जो दिनचर्या में आता है वो है नुमा शाम का योग। तो नुमा शाम का योग घर लौटने का समय है। सारे दिनचर्या में जीवन दिन भर में इतनी धूल उड़ती है विचारों की, संबंधों की, तो नुमा शाम का वो समय है जब हम वापस अपने घर लौट आते हैं। घर लौटना अर्थात वापस आत्मिक स्थिति की ओर आ जाना, और वापस अपना कनेक्शन बाबा से जोड़ना। हम हमेशा कहते हैं कि हमेशा हम बाबा को दो बार अपना चार्ट दे, एक तो लिखित, एक तो मौखिक। तो नुमा शाम के समय हम बैठ जाए, यदि ऑफिस में भी हो, कहीं पर भी हो, 5-10 मिनट बैठकर बाबा को अपनी दिनचर्या सुना देना कि मैंने आज क्या क्या किया, सुबह से लेकर अब तक मैंने क्या क्या किया, मेरे हाथ से कोई विकर्म तो नहीं हो गया, कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई बहुत ज्यादा भोग वृत्ति में तो मैं नहीं चला गया, कोई संबंधों में कड़वाहट तो नहीं आ गई, मेरे कोई शब्द मेरा कोई व्यवहार दूसरों को दुखी तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा हो भी तो बाबा को सब शाम को सौंप देना और फिर योग करना, और योग में फिर नए संकल्प धारण करना, कोई प्रण करना। तो जितना हो सके बैठ के, अगर नहीं हो सकता है, बाबा ने तो वैसे टाइम दिया है 6:30 से 7:30, पर फिर किसी मुरली में ये भी कहा है 7 से 7:30, अगर वो भी नहीं होता है तो जहां पर भी आप है और व्यस्त दिनचर्या में है, थोड़े देर के लिए एकाग्रता से बैठकर जो कुछ आज दिन भर में किया वो मन ही मन बाबा को स्वाहा समर्पित कर देना। तो नुमा शाम का योग जैसा अमृत वेला शक्तिशाली है, लक्ष्य रखना है कि मेरा नुमा शाम भी शक्तिशाली हो जाए, और बहुत टू मच अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करने करके रखना है बहुत सारी बातों में। तो जितना ज्यादा हम इन्वॉल्व करके रखते हैं फिर हमारी बुद्धि भटकने लगती है। जैसे एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति था जिसको गीता का पाठ करना था, तो उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे एक ऐसा गीता पाठी चाहिए कि जो आए और मुझे गीता सिखाए। तो मित्र ने कहा, मैं एक पंडित को जानता हूँ, परंतु वो बहुत ज्यादा खेती में व्यस्त रहता है, उसके 4 बैल हैं, उसकी बहुत बड़ी खेती है, और सुबह से लेकर रात तक वो खेतों में लगा रहता है, पर हाँ वो गीता का पंडित है। तो ये व्यक्ति कहता है, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो इतने व्यस्त है और इतने संसार में डूबे हुए हैं, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने वास्तव में गीता के लिए जो समय निकालता है और गीता को जिसने अपने बुद्धि में भीतर से धारण किया है। तो संसार में तो बहुत सारी चीजें करने को है, यदि हम सोचे कि संसार का मुझे अनुभव ही लेना है तो कितने जीवन ही कम पड़ेगा और वो अनुभव कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके हम अपने आप को फ्री करते चले। तो शाम का योग बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे अंदर यदि हमें ज्ञान के संस्कार भरने हैं तो ज्ञान का डिस्कशन होना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि छोटे छोटे ग्रुप बन जाए, दो माताओं का, दो कुमारों का, दो कुमारिया, या सेंटर पर जो बहनें हैं रात को सोने से पहले एक 10-15 मिनट सुबह की जो मुरली है उसको थोड़ा रिवाइज करें। रिवाइज अर्थात भाषण नहीं, आपस में बस बैठे सर्कल में और थोड़ा सा डिस्कशन करें कि अच्छा आज बाबा ने ये कहा वो कहा, ताकि रात को सोने से पहले हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो। तो ज्ञान का डिस्कशन, और ऐसा कई हमने देखा है, कुछ लोग हर संडे संडे मिलते हैं और ज्ञान की चर्चा करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो ज्ञान की थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन होते रहना चाहिए। उसके बाद में अगला है चार्ट, 9th पॉइंट, जो हमारी दिनचर्या में होना चाहिए। चार्ट अर्थात केवल डायरी लिखना नहीं है, चार्ट अर्थात जिसमें हम एक संवाद स्थापित कर रहे हैं बाबा से फिर से कि आज मैंने ये सब किया। और चार्ट अर्थात केवल याद का ही चार्ट नहीं, हो सके तो आप पूरी दिनचर्या लिखो, एक छोटी सी डायरी बना लो आज से ही, उसमें लिखो जैसे आज 28 तारीख रविवार का दिन, तो आज उसमें लिखो आज भट्टी का दिन था, आज हमने ये किया, ये सीखा, ये नई पॉइंट्स हमको पता चली। तो ऐसी कोई ना कोई नई बातें उसमें लिख देना है। और इसका एक फायदा ये भी है कि हम कई दिनों के बाद जब डेट्स भूल जाते हैं तो ये डायरी बहुत काम आती है कि इस डेट में ये हुआ था, और हर संडे अपनी डायरी को थोड़ा चेक करें और उस डायरी में जो भी होता है दिनचर्या में शॉर्ट में उसको लिख देना है। अगर हमको डर लगता है कि कोई पढ़ ना ले तो कोड लैंग्वेज यूज कर सकते हो, किसी का नाम नहीं डाले उसमें, पर जब हम लिखते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। और उसको ऐसा लिखो कि जैसे हम बाबा को ये खत लिख रहे हैं, ये लेटर है, उसमें स्टार्टिंग में बाबा और लास्ट में गुड नाइट और फिर सो जाना। तो चार्ट, तो ये हो गया इस ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या है उसकी 9 बातें। अब एक लास्ट पॉइंट और भी है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसको कहेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो उसमें 2 बातें हैं और उन 2 बातों में सबसे पहली बात है एक्सरसाइज।
जितना हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, हमारा मन भी तंदुरुस्त हो जाता है। यदि हमारा शरीर ही अस्वस्थ है, यदि शरीर में ही लचीलापन नहीं है, शरीर ही शक्तिशाली नहीं है, और हम बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, ढेर सारे और अभी 29th मेडिटेशन का महत्व, इस पर लेक्चर्स रखे गए हैं बहुत सारे, इसके ऊपर विश्व भर में अलग अलग से दूर, तो हमारा हर जो जॉइंट है, एनर्जी को मूव करना पसंद है। और जितना हम जितना जॉइंट्स को घुमाएंगे, छोटे व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, कोई भी, स्विमिंग, थाई चि, बहुत सारी एक्सरसाइज, शरीर में वही सारे केमिकल्स, सीरोटोनिन, एंडोरफिन्स, आनंदामाइड, ये सब रिलीज होते हैं। और वो रिलीज होने के बाद में उनको कहते हैं हैप्पीनेस हॉर्मोन्स, तो बहुत खुशी का अनुभव होता है। अभी कुछ दिन पहले ओपीडी में एक पेशेंट आया था, तो वो लड़का यंग, 30 ईयर्स का, वो कहता है कि मैं कह रहा था कि मैं 10 साल से जिम जाता हूँ, अभी आबू में पिछले 4-5 मास कंटिन्यूअस बारिश थी, तो हमने पूछा बारिश में भी जाते थे, बोलता है हाँ मैं तो घर पे ही करता था, अगर मैं जिम ना करूँ, एक्सरसाइज ना करूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती। तो उसने इतना स्वयं को आदत डाल दी है उसकी कि कितना अच्छा उसका बॉडी एकदम हेल्दी। तो जितना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अध्यात्म में हम आगे बढ़ सकें। अगर शरीर ही बीमार है तो स्पिरिचुअलिटी फेल। तो लक्ष्य रखना है कि हम एक्सरसाइज के लिए 15 मिनट, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर निकाले। अगर बाहर खुले में एक्सरसाइज करो, जिसको ग्रीन जिम कहते हैं, कहीं है जगह तो वहां, या तो अपने ही कमरे में, परंतु एक्सरसाइज बहुत बहुत आवश्यक है। और लास्ट पॉइंट वो है प्रकृति। हमारा सबसे अधिक संबंध प्रकृति से है, प्रकृति निर्विकार है, जितना हम निर्विकार बनने का प्रयत्न करेंगे, अपने आप प्रकृति हमें आकर्षित करेगी। और जितना हम एकांत और मौन में प्रकृति में रहेंगे, जैसे हवाओं की सरसराहट, पंछियों की आवाजें, पहाड़, ये सारी चीजें जैसे जैसे हम देखते हैं, आधा घंटा भी रोज चले जाओ, अगर बहुत दूर है, ऐसा कोई स्थान नहीं है अंदर, तो गाड़ी से जाओ, गाड़ी पार्क करो, थोड़ा सा समय गार्डन में बिताओ, पर एकांत में और मौन में, देखो, आवाजें सुनो, और हो सके तो वहां पर थोड़ी सी मुरली भी स्टडी कर लो। तो ये सारी चीजें हमारे मन को धीरे 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 वापस अपनी तरफ लौटाते हैं, आत्मिक स्थिति की तरफ लौटाते हैं। तो जितनी प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में भरती है, अपने आप हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। रोगों का आना अर्थात ही प्राण ऊर्जा कम है, तो हम अपने भीतर प्राण ऊर्जा को भरे। सूरज की जो किरणें हैं, वो कितने रोगों की बीमारियों का इलाज है। जिन देशों में सूरज बहुत कम उगता है, वहां पर देखा गया डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, विटामिन डी की कमी। तो रोज 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कोई फिक्स टाइम नहीं है, एनी टाइम सूरज का थोड़ा एक्सपोजर हो जाए, नंगे पाँव धरती पर चलना, धरती से हमारा स्पर्श हो हमारे पैरों का, हम धरती से आए हैं, धरती में हमें जाना है, मिट्टी से हमारा अनादि नाता है, तो वहां पर मिट्टी पर जब हम चलते हैं, तो हमारे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा भरने लगती है। और जिनको अनिद्रा की बीमारी है, बिल्कुल नींद नहीं आती, दवाइयाँ और अर्थिंग कहते हैं, इस पर ढेर सारी किताबें लिखी हुई है आज की तारीख में। तो रोज आधा घंटा नंगे पाँव जमीन पर चलना, जो डायबिटिक अगर पेशेंट है तो वहां पर कंकड़, पत्थर, कांच के टुकड़े हैं उसको निकाल देना, और कोई एक ट्रैक क्रिएट करना। ऐसे कई लोगों ने किया, आजकल तो फॉरेन कंट्रीज में अर्थिंग पैड्स आते हैं, जो ऑफिस में काम करते हुए आईटी कंपनीज में पैर के नीचे रखते हैं वो अर्थिंग के लिए। तो यहाँ तो हमारे पास जमीन है, तो हम जमीन से जुड़े, तो जितना हम धरती से जुड़ेंगे, उतना हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का संचार हो। प्राकृतिक स्थान जो है, रोज 15 मिनट 20 मिनट एकांत में कहीं जाकर बैठना, चाहे कहीं पर भी जगह नहीं है तो छत तो है ही, कोई गार्डन होगा तो वहां चले जाओ, कोई नदी झरना पहाड़ एनीथिंग, बट वो हमको क्या करता है, वापस प्राण ऊर्जा से जोड़ता है। तो ये टोटल हमने 10 बातें देखी, एक बार फिर से रिवाइज करा लेते हैं। सबसे पहली बात आप बताएंगे, क्या बताया, स्क्रीन देख सकते हैं ऑडियंस, सबसे पहली पॉइंट अमृत वेला। तो ये संकल्प करेंगे इस भट्टी से निष्कर्ष कि हमें एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करना है, ये सबसे पहली बात। दूसरी पॉइंट बताई मुरली, तो रोज की मुरली का अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है। यदि आप के वहाँ कोई टेस्ट पेपर बनाता है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो रोज की मुरली पर टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट को लो रोज देना, उसका अध्ययन करना, उसको सेंटर पर जाकर सुनना, हो सके तो उसकी चर्चा करना। तीसरी बात बताई थी भोजन, तो भोजन जितना हो सके मौन में बनाना और मौन में स्वीकार करना, और जितना हो सके अकेले में, अगर ग्रुप बैठे भी है तो हम मौन में रहें। चौथी बात बताई थी कौन सी, ट्रैफिक कंट्रोल, अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही सेट करना है, आधे आधे घंटे में, एक एक घंटे में, दो दो घंटे में, यदि व्यस्त है 2-3 घंटा ऐसे ही निकल गए तो फिर जैसे ही समय मिला तुरंत स्थिर हो जाना और अभ्यास करना, रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना, छोटे छोटे अभ्यास, बस परम धाम में गए, शिव बाबा को टच किया, आ गए, सूक्ष्म वतन में गए, बाबा को कहा थैंक यू और वापस आ गए। जैसे किसी को पूछा गया था एक प्रश्न कि मेडिटेशन की डेफिनेशन क्या है, तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, उसने कहा था कि मेडिटेशन अर्थात यदि 5वीं मंजिल से हम किसी ने ढकेल दिया और हम नीचे गिर गए तो नॉन मेडिटेटर जो होता है वो सीधा धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, और जो मेडिटेशन करने वाला है वो बीच बीच में रुकेगा और कहेगा कि अब तक सब ठीक है, फिर रुकेगा, मन में कहेगा नहीं अब तक तो सब ठीक है, और लैंडिंग करेगा धीरे से आराम से। तो दैट इज मेडिटेशन। सो ट्रैफिक कंट्रोल। उसके बाद में है कर्मयोग। हमारा जीवन केवल मुरलिया ही पढ़ते रहना या वो तपस्या ही याद में ही बैठे रहना वो नहीं, हमें कुछ ना कुछ कर्म करना है, तो ही हम बता सकेंगे कि हमारे जीवन में कर्म और योग का बैलेंस है। उसके बाद में है सेवाएं। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन को बेहद की सेवाओं के लिए समर्पित करना है, क्योंकि भगवान आए हैं और हम उसके सहयोगी हैं। एक विदेशी महिला थी, तो वो जब फ्लाइट में चढ़ रही थी तो किसी ने उससे पूछा था तुम क्या करते हो, तो वो बीके माता जो थी 90 वर्ष की, भारत आ रही थी, तो उसको पूछा तुम क्या करती हो, तो उसने कहा हम भगवान की मदद करते हैं। तो जो पूछने वाला था वो भी एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे लोग हैं जो भगवान की मदद करते हैं। तो सेवा करना। उसके बाद में है नुमा श्याम का योग। एक माता थी, इसके पहले भी कई बार सुनाया, वो माता अनपढ़ थी, महाराष्ट्र से आई थी, तो बाबा के कुटिया में रोज बैठती थी सुबह 2 बजे से। अब उसको ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है, ना मुरली समझ में आती है बहुत ज्यादा, परंतु वो आती जरूर थी। तो हमारे एक भाई ने उससे पूछा है माता आप योग क्या करती हो, जरा बताना कैसे योग का करती हो, तो उसने कहा मुझे योग भी कुछ नहीं आता है, मैं तो ऐसा करती हूँ कि बाबा की कुटिया में बैठती हूँ और फिर यहाँ से ऐसी आत्मा को निकालती हूँ और ऐसी बाबा के सामने रख देती हूँ और बाबा को कहती है इसका जो करना है करो, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं ज्यादा बुद्धि नहीं है, और ये कितना बड़ा योग है कि पूरी आत्मा को ही यहाँ से निकाल कर बाबा के सामने रख दिया, तुमको जो करना है, जो सेवा लेनी है वो सब करो, तो उसमें समर्पण समाया हुआ है, तो अपने आप को समर्पित कर देना। तो नुमा श्याम का योग भी हमारा शक्तिशाली हो, जैसे अमृत वेला शक्तिशाली है वैसे नुमा श्याम का, जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट करना चालू करें, जो करते हैं उसको आधा घंटा कर दे, और जो आधा घंटा कर दे वो 1 पौन घंटा या 1 घंटा कर दे, और जितना हो सके बैठ के, तो पूरे 24 घंटे में कम से कम 2 घंटा तो हमारा बैठा हुआ योग हो। और भट्टियों के दिनों में तो और ज्यादा। फिर धीरे धीरे उसको 3 आवर्स 4 आवर्स तक लेके आना है, ठीक है। तो नुमा शाम का योग, उसके बाद बताया ज्ञान की चर्चा। तो रोज थोड़ी सी चर्चा ज्ञान की होती रहे, मतलब हमारे मुख से ज्ञान निरंतर बहता रहे, कुछ ना कुछ हम किसी को बताते रहे, समझाते रहे। जैसे एक उदाहरण और है, ज्ञान सरोवर में एक बहुत बड़े ऑफिसर आए थे, शायद पुलिस कमिश्नर थे वो, और एक भोली भोली माता थी, उसको तो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, वो उस ऑफिसर को पूरा उसने समझाया कि आत्मा, ये परमात्मा, ये सृष्टि चक्र, और वो सब समझाने के बाद म्यूजियम में उस ऑफिसर ने कुछ प्रश्न पूछा, तो वो जो भोली भोली माता थी वो उसको ऐसे ऐसे देखने लगी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इतने बड़े साहब हो के इतना भी नहीं समझता कि शिव बाबा हमारा पिता है। वो तो जो ऑफिसर थे वो कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो वो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या सुना वो सब भूल गए, बस वो उस माता की बात उनको याद रह गई। फिर यहाँ से गए और सेंटर पे उन्होंने कोर्स किया और फिर ये अनुभव सुनाया था कि मुझे ज्ञान में उस माता के इस शब्द ने लाया, कि उसने मुझे कहा था इतने बड़े ऑफिसर होके इतना भी नहीं पता तुमको कि शिव बाबा तुम्हारा पिता है। तो ज्ञान की चर्चा, और लास्ट में बताया चार्ट। क्या करना है, बाबा को एक डायरी बनानी है, उसमें लिखना है कि बाबा आज हमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, और लास्ट में गुड नाइट। और लास्ट पॉइंट बता ही एक्स्ट्रा में दो बातें, एक तो रोज थोड़ी एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए और प्रकृति के साथ जुड़ना है। जितना जितना हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे उतनी हमारी चेतना में निर्विकारिता प्रवेश करेगी, उतना हमारा मौन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो ये थी 10 बातें। तो हमें बहुत खुशी है कि आज इस भट्टी में आपने हमें बुलाया और ये सारी चर्चा करने का मौका दिया। तो शीला दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, अजय भाई को भी धन्यवाद वहाँ पर, और यहाँ पर डॉक्टर कैलाश भाई है जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट संभालते हैं, उन्होंने ही हमसे कहा था कि दीदी का फोन आया है और दीदी कह रहे हैं कि क्लास के लिए। तो डॉक्टर कैलाश भाई का भी धन्यवाद। यहाँ पर हमारे पास सुखदेव भाई है और अखिल भाई है जिन्होंने ये सब अरेंज किया, उनका भी धन्यवाद। वहाँ पर भी जो साउंड डिपार्टमेंट वाले दूसरे भाई बहने हैं और बाकी जो भी सेवाधारी है जिन्होंने ये सारा आयोजन किया, वहाँ पर इतनी बड़ी भट्टी, विशाल भट्टी का आयोजन किया, हम देख रहे हैं कितने सारे लोग बैठे हुए हैं और कितना शांति से बैठे हुए हैं। तो ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखता है पर ये सारा आयोजन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और कितना समर्पण लगता है। तो उन सभी को, सभी आत्माओं को बहुत 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 दिल से शुक्रिया, मधुबन से शुक्रिया, दादियों की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद, और शिव बाबा की तरफ से तो है ही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।